Surgió Me.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी से सशक्त होता भारत। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं सीनियर साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वरन। मिस्टर वेंकटेश्वरन, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
थैंक यू, बहुत धन्यवाद।
मिस्टर वेंकटेश्वरन, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्ज हुआ है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे मिस्टर वेंकटेश्वरन की भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए इस उपलब्धि का महत्व क्या है।
दो चीज इसमें महत्व का मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला चीज है, ये स्टेज वेरी क्रिटिकल है। इंडिया का एक अपनी आप एक एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में थ्री स्टेज बोलेगा, ये सेकंड स्टेज है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल स्टेज हम क्रॉस करके इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज थ्री में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकंड, वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवरनिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। इस तरीके से एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 इयर्स एक टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। सो उसका बेसिस में, उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है, वो क्रिटिकलिटी अचीव हो गया है। सो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। सो दो चीज है, फ्यूचर में हमको एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा एंड सेकेंड, एक नया टेक्नोलॉजी में हमको एक सक्सेस मिला।
तो ये जो फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बताया जा रहा है, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक इसकी कैपेसिटी है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हम पहले जो हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज करते थे उसके मुकाबले इसका स्पेशल फीचर क्या है?
तीन चीज इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट चीज, यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, है ना, एटॉमिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको सेफली सेव करना पड़ता है। बट इस रिएक्टर में ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब नया फ्यूल पैदा होता है, दैट इज वेस्ट नहीं होता है, नया फ्यूल पैदा होता है। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो वर्ड ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब न्यू ब्रीड होता है, किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। सो एक बात है। वो फास्ट मतलब क्या है? फास्ट मतलब इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा, दैट इज उसका काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक U-38 नहीं तो थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बना। सो यही है इस नाम में, दो शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, फास्ट है, ब्रीडर है। तो वो फास्ट का मतलब फास्ट न्यूट्रॉन है, सो वो टकरा के एक नॉन फ्यूअल मटेरियल को फ्यूअल बनाता है एंड वो ब्रीडर, ये रिएक्टर नया फ्यूअल को ब्रीड करता है।
और अगर आप सिंपल शब्दों में हमें क्रिटिकलिटी का मतलब भी समझा सके, जो कहा जा रहा है सबसे बड़ी जो उपलब्धि बताई जा रही है कि क्रिटिकलिटी हासिल हो गई है।
सपोज आपके पास स्ट्रॉ है, ओके, दैट इज हम एग्रीकल्चर वेस्ट स्ट्रॉ होगा ना, वो सिंगल स्ट्रॉ ले लो, उसको लाइट करने के लिए प्रयास करना, वो लाइट नहीं, बट दो तीन स्ट्रॉ को आप इकट्ठा करके लाइट किया तो देन वो लाइट होगा, कंटिन्यूअसली फायर बर्न हो जाएगा। सो उसी तरह एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वही है क्रिटिकलिटी। एक सिंगल स्ट्रॉ बर्न नहीं होगा, वो बुझ जाएगा, बट बहुत स्ट्रॉ को आप इकट्ठा किया तो वो अपनी आप फायर का हीट से कंटिन्यूअसली बर्न होता है ना, उसी तरह न्यूक्लियर में होगा, इसका है क्रिटिकल।
सो इससे हमारा जो नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इसे एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, ये कितना एनवायरमेंट के लिए भी लाभदायक है, इसके बारे में बताएं।
लास्ट 20-30 वर्ष में लोग बहुत एक एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी ग्लोबल वार्मिंग, ये पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब ये कार्बन या ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा करता है। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगाया तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टेनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, सो फ्यूचर पावर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा, उसका इस प्रयास एक बहुत इम्पॉर्टेंट घट।
तो आप कह रहे हैं कि जब हम तीसरे चरण में जाएंगे तो मेनली थोरियम रिजर्व्स जो हमारे देश में उपलब्ध हैं उनके इस्तेमाल से ये परमाणु ऊर्जा का निर्माण होगा और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा।
पक्का है, एक्चुअली हम एक उदाहरण या एक एनालॉजी के रूप में हम देखना तो एक आप सोच लो दैट पानी भरा वाला एक कोल या ये देख लो, तो उसको हम ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद ही आप उसको फ्यूल के तरह यूज कर सकता है ना, सो फ्यूल प्रिपेयर करना है। उसी तरह थोरियम अपनी आप डायरेक्टली ऊर्जा पैदा नहीं करेगा, उसको प्रिपेयर करना है, उसको मॉडिफाई करना है, वो मॉडिफिकेशन ये सेकेंड स्टेज में होता है, ये सेकेंड स्टेज रिएक्टर उस थोरियम को फ्यूल के तरह कन्वर्ट करता है, सो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हम, ये बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है न्यूक्लियर एनर्जी की, कल जो ये डेवलपमेंट हुई है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो हमने क्रिटिकलिटी हासिल की है, ये भारत का जो पूरा इकोसिस्टम है न्यूक्लियर एनर्जी का इकोसिस्टम उसमें और ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम में भारत की साख बढ़ाता है, भारत का जो एक दर्जा है आपको लगता है कि एक पायदान ऊपर चला गया है?
सर्टनली ये एक इम्पॉर्टेंट फेदर इन द कैप है इंडियाज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, पर्टिकुलरली बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है ना, ये फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी उतना आसान नहीं है, कोई भी हमको नहीं दिया है, अपने आप हम इसको लर्न करके कंस्ट्रक्ट करके टेस्ट करके एग्जामिन करके हम तैयार किया है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वो थर्ड स्टेज का एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी अभी काम कर रहा है, उसका मतलब है दैट थर्ड स्टेज में कैसा थोरियम को हम यूज करके उसको फ्यूल बना के उसका यूज करना है, उसका टेस्ट रिएक्टर भी अभी चल रहा है, वो टेस्ट रिएक्टर 20 साल कम से कम हम चला के उसे एक्सपीरियंस मिल के इकट्ठा करके उसके बाद हम थर्ड स्टेज को हम बिल्ड करेंगे इसी तरह, सो वो भी पैरेलली चल रहा है, सो इसका मतलब है दैट ये तीन स्टेजेस हम क्रॉस करके वो एक हमारा थोरियम को हम यूज करके एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ना का चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहा है।
सो ऑलरेडी हमारा जो इकोसिस्टम है अभी न्यूक्लियर एनर्जी का, जो ऑलरेडी रिएक्टर्स हैं, उसका ब्रीफ ओवरव्यू आप दे सकते हैं, कितने रिएक्टर्स हैं हमारे पास?
लगभग अभी हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 4% हम ये न्यूक्लियर एनर्जी से हमको मिलता है, अंदाजा से हम बोल रहे हैं तो, बट मोस्ट ऑफ दिस रिएक्टर्स में हमको यूरेनियम यूज करना पड़ता है, सो यूरेनियम ज्यादा मात्रा तक इम्पोर्ट करना पड़ता है, सो इसलिए हम फॉरेन देश को उनका सप्लायर्स को डिपेंड करना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इंपोर्टिंग पेट्रोलियम, उसी तरह उसको इंपोर्ट करना पड़ता है दैट ये यूरेनियम, इंडिया में उतना ज्यादा मात्रा में यूरेनियम नहीं मिलता है, सो इसलिए हमको एक प्रॉब्लम है, बट ऑन द अदर हैंड थोरियम बहुत मात्रा में इंडिया में है, सो ये थोरियम को कन्वर्ट करके फ्यूल के रूप में कन्वर्ट करके यूज करना, यही है ये थ्री स्टेज प्रोग्राम का।
और जैसा आपने कहा कि थोरियम ज्यादा यूज होगा बाद में और उससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल है, सिमिलरली ये जो डिजाइन हुआ प्रोडक्शन हुआ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, उसमें मैक्सिमम स्वदेशी इनपुट्स हैं और 200 इंडस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें एमएसएमईज भी जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए और सबका प्रयास जो एक मूल मंत्र है वर्तमान सरकार का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये?
हाँ जी, पर्टिकुलरली ये टेक्नोलॉजी है ना, ये सेकेंड स्टेज में हम यूज कर रहा है ये फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी कोई भी दूसरे देश को नहीं दे, आई मीन एटलीस्ट आजकल एक रेजीम चल रहा है, इस रेजीम में ये टेक्नोलॉजी किसी देश हमको नहीं देगा, सो इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक एक कदम रख के इस टेक्नोलॉजी को हम बिल्ड किया है, एंड ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के साथ साथ इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है, मैं बोला ना लगभग 30 साल एक सिर्फ 30 मेगावाट प्लांट एक टेस्ट रिएक्टर बना के उसमें हम टेस्ट किया है, टेस्ट करने के समय क्या क्या इश्यूज इमर्ज हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हम पढ़ के हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया। सिर्फ मास्टर करना काफी नहीं है, बिकॉज आप एक 500 मेगावाट को बिल्ड करना है तो देन उसके लिए आपको कंपोनेंट्स चाहिए, वो एक एक कंपोनेंट बनाने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज चाहिए। इस तरह से कैपेबिलिटीज डिफरेंट एमएसएमई के साथ साथ बहुत इंडस्ट्रीज को हम ट्रांसफर करके उनको वो कैपेबिलिटीज बिल्ड करके ये इकोसिस्टम बनाया है दैट अपनी आप दैट इज इंडिया ऑन इट्स ओन कैन मेक दिस वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्टर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर अवर इंडस्ट्री।
जी, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी कार्बन एफिशिएंसी के बारे में बता सकते हैं और कॉस्ट के बारे में बता सकते हैं?
इस एटॉमिक पावर प्लांट कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करेगा बिकॉज इसमें कोई कार्बन बर्निंग या उस तरह से कुछ नहीं। ओके, आप इनडायरेक्टली बोल सकता है दैट ये कंस्ट्रक्ट करने के समय हम इतना सीमेंट यूज किया है, वो सीमेंट प्रोड्यूस करने के समय कार्बन एमिशन हो सकता है वगैरह वगैरह, वो दैट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के समय इनडायरेक्टली कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया है उसके बाद कुछ कार्बन ये नहीं क्रिएट करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है, इसलिए एटॉमिक पावर प्लांट को लोग बोलता है एक ग्रीन एनर्जी सोर्स। इनफैक्ट फ्यूचर में एनर्जी मिक्स में एटॉमिक पावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा करके बहुत लोग मान के अभी चल रहा है, इसको भी एक ग्रीन एनर्जी का भाग में देख रहा है, एक चीज है। सेकेंड चीज कॉस्ट में देखा तो लगभग मेरे ख्याल से 700 करोड़ इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट लगाया है, बट ये कॉस्ट करके मैं नहीं बोलेंगे बिकॉज मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट है। सी, आप कोई चीज नया डेवलप करने के समय आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, नॉलेज डेवलप होता है, तो ये एक्चुअली सिर्फ कॉस्ट करके इस प्लांट को कितना कॉस्ट हुआ करके हम नई बात कर सकता है मेरे ख्याल से, ये एक इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में हम इस तरह से प्लांट करने के समय इतना कॉस्ट नहीं होगा।
जी, एक और चीज है कि ये कहा जा रहा है कि जब ये पूरा हो जाएगा फेज तो हम रशिया के बाद दूसरे देश होंगे जो कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का निर्माण करेंगे। हाँ। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
हाँ जी, रशिया के बाद फास्ट सोवियत यूनियन के बाद सेकेंड देश होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये नेक्स्ट जेनरेशन प्लांट है, ये कॉपी नहीं है, वो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम लेवल ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये और सेफ्टी के साथ और रोबस्ट टेक्नोलॉजी के साथ विषय है। सो वी कैनॉट एग्जैक्टली से दैट इट्स अ सेकेंड थिंग, एक एडवांस लेवल में हम किया है नेक्स्ट जेनरेशन। एक्चुअली ये सब बोलता है थर्ड जेनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसका मतलब है इसमें बहुत सेफ्टी फ्यूचर्स।
ग्लोबल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम में बाकी देशों में अगर दो चार एग्जांपल्स आप देखें कि कितने प्रतिशत न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है सिविलियन पर्पसेस के लिए, नागरिकों के लिए, और भारत में आगे की क्या संभावना है या लक्ष्य है?
सिविलियन यूज में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला लोग में टॉप में है जापान एंड फ्रांस। फ्रांस में लगभग 60% के ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, जापान में भी कंसिडरेबल पार्ट न्यूक्लियर एनर्जी में आता है, बाकी सब देश में लगभग 10% 15% के नीचे ही है, बट फ्यूचर में चेंज होगा। आज लगभग 50 प्लांट्स डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में है, प्रपोजल्स में है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट समथिंग दैट वी कैन अवॉइड इन फ्यूचर।
और भारत का मेरा ब्रॉडली क्या लक्ष्य है?
भारत का लक्ष्य है मेरे ख्याल से लगभग 10-15% न्यूक्लियर एनर्जी में नेक्स्ट एक 10 इयर्स में 20 इयर्स में पॉसिबल होगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट न्यूक्लियर एनर्जी में एक चीज है कंस्ट्रक्शन टाइम, दैट इज बहुत टाइम लगता है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
जी,
तो वो लीड टाइम हम देखा तो नेक्स्ट 10 इयर्स में मे बी हम पूरा प्रयास किया तो लगभग 5-10% तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर पावर से हम कर सकते हैं।
मिस्टर वेंकटेश्वरन, आप आए हमारे साथ शामिल हुए आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में, जो उन्नत रिएक्टर टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है उसके बारे में ताजा घटनाक्रम पर आपने जो हमसे चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू ऑल।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में